दो, परंपरा और गतिशीलता, रूढ़ी और परंपरा। सामान्यतः आज परंपरा को देखकर चलने वाला गतानुगतिक और उससे उच्छिन्न होकर चलने वाला प्रगतिशील माना जाता है। यह जितना लोक व्यवहार में सत्य दिखाई पड़ता है, उतना ही काव्य में भी। सृजन की नवीनता और मौलिकता के चक्कर में पड़े हुए आज के अनेक कवि जिस उच्छृंखलता की सृष्टि कर रहे हैं, वह किसी सहृदय से छिपा नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि वे रूढ़ या गतानुगतिकता को परंपरा का पर्याय मान लेते हैं अथवा उनके अंतर को समझने में भूल करते हैं। रूढ़ परंपरा का अंग जरूर है, पर वह परंपरा का गलित अंग है। परंपरा में और भी बहुत कुछ है। जब कालिदास ने कहा कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम, तो उनका मतलब कदाचित परंपरा के रूढ़ तत्व से ही था। यह रूढ़ तत्व साधु नहीं माना जा सकता। ये रूढ़ियां सब समय रूढ़ियां नहीं रही होंगी। प्रारंभ में और उसके बहुत समय बाद तक उनका खास प्रयोजन रहा होगा। परंपरा के साधु असाध तत्वों को अलग करने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा ही हम ग्राह्य तत्वों को स्वीकार्य तथा अग्राह्य तत्वों को अस्वीकार्य करार देते हैं। किसी देश के साहित्य, दर्शन, संस्कृति आदि की विशिष्ट परंपरा होती है। व्यक्ति का कृतित्व उस परंपरा की एक कड़ी के रूप में ही ग्राह्य होगा। उसका मूल्यांकन करते समय आवश्यक होगा कि तत्संबंधी सुदीर्घ परंपरा को बराबर ध्यान में रखा जाए। इस नए जोड़ के कारण परंपरा की स्थिरता आंदोलित हो उठती है और आलोचक को नए सिरे से मूल्यांकन करना पड़ता है। ऐसा करना तभी जरूरी समझा जाएगा जब नवीन कृतित्व के कारण परंपरा में कुछ नया जुड़ा हो, और नया तभी जुड़ सकता है जब समूची परंपरा की चेतना रचयिता को प्राप्त हो। T.S. इलियट ने परंपरा को बहुत ही व्यापक और गंभीर महत्व दिया है। यह किसी को विरासत में नहीं मिलती, इसे परिश्रम पूर्वक अर्जित करना पड़ता है। इसके मूल में एक ऐतिहासिक चेतना अनुस्यूत है। इलियट के मतानुसार जो 25 वर्ष गदह पचीसी के बाद कवि बना रहना चाहता है, उसके लिए इस चेतना की उपलब्धि आवश्यक है। ऐतिहासिक चेतना का तात्पर्य है अतीत के व्यतीत और उसके वर्तमान के प्रति पूर्ण जागरूकता। इसे दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि परंपरा के अंतर्गत द्रव्यों के साथ साथ वर्तमान जीवंत द्रव्यों के प्रति सचेत रहना कवि का कर्तव्य है। उसे केवल अपने युग के प्रति ही सचेत नहीं रहना होगा, बल्कि समूची काव्य परंपरा के प्रति जागरूक रहना होगा। क्या सतसई रीतिबद्ध काव्य है? बिहारी ने 700 दोहों वाली जिस सतसई की रचना की, उसकी परंपरा काफी पुरानी है। बिहारी उसकी परंपरा की एक कड़ी के रूप में आते हैं। बिहारी की ऐतिहासिक चेतना के प्रति संदेह नहीं प्रकट किया जा सकता। इस चेतना को उन्होंने विरासत में नहीं पाया था, बल्कि परिश्रम पूर्वक अर्जित किया था। इसके प्रमाण में उनकी सच्चाई को पेश किया जा सकता है। हाँ, यह दूसरा सवाल है कि उस परंपरा में उन्होंने कितनी रूढ़ियों को ग्रहण किया और कितने प्रवाहमान साधु तत्वों। क्या उनकी सच्चाई ने भारतीय काव्य परंपरा में कुछ ऐसा जोड़ दिया कि समूची परंपरा का पुनः समंजन आवश्यक है? बिहारी सच्चाई को लेकर चलने वाले विवादों के संदर्भ में इन प्रश्नों का महत्व और भी बढ़ जाता है। यद्यपि पंडित पद्म सिंह शर्मा द्वारा बिहारी की आलोचना करते समय दाद देने वाली आलोचनात्मक पद्धति अपनाई, फिर भी उस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण काम यह हो गया कि गाथा सप्तश्रुति, आर्या सप्तश्रुति, अमर शतक आदि की गाथाओं और श्लोकों के समानांतर रखे जाने वाले बिहारी के दोहों की उद्धरणी प्रस्तुत हो गई। बाद में कुछ आलोचकों में बिहारी में अंधानुकरण की प्रवृत्ति के न होने की सराहना की, पर बीच बीच में जहाँ अनुकरण नहीं है, वहाँ भी अनुकरण सिद्ध करने की मौलिकता भी दिखलाई। ऐसी स्थिति में शर्मा जी की ऐतिहासिक चेतना का विवेचन अपना महत्व रखता है। बिहारी को रीत कवियों में रखने का परिणाम यह हुआ कि उनकी रचनाओं में रीति तत्व निकालने की घुड़दौड़ मच गई। यहाँ तक कि नई से नई पुस्तकों में भी इसके लिए काफी पृष्ठ देने पड़े। बिहारी की रीतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। साधारणतः विश्वास किया जाता है कि इस कवि ने अपनी सच्चाई की रचना रीति काव्य की दृष्टि से ही की थी, क्योंकि उनके दोहों को देखकर यही अनुमान होता है कि किसी न किसी नायिका का लक्षण उनके मन में अवश्य उपस्थित था। पुराने हृदयों को भी यह बात लगी थी कोष्ठ में, क्योंकि कभी कभी इन दोहों को नायिका भेद के उपक्रम से सजाया गया है कोष्ठ, और नए सहृदयों को भी अनुभूत हुई है। परंतु इस बात से केवल यही सिद्ध होता है कि बिहारी के प्रशंसक रीति मनोवृत्ति के बहुत सहृदय थे। स्वयं बिहारी भी रीति ग्रंथों के अच्छे जानकार रहे होंगे, इसमें संदेह नहीं, किंतु उनके प्रत्येक दोहे में किसी न किसी नायिका को खोज लेना यह नहीं सिद्ध करता कि वे रीति ग्रंथ लिख रहे थे। अमरूक शतक के श्लोक नायिका भेद की चर्चा करने वालों के बहुत प्रिय रहे हैं, परंतु इसलिए यह नहीं कहा जाता कि अमरूक शतक नायिका भेद का ग्रंथ है। हाल की प्राकृत भाषा में लिखी हुई गाथा सप्तशती और गोवर्धन की संस्कृत भाषा में लिखी हुई आर्या सप्तशती के प्रत्येक पद्य में किसी न किसी नायक नायिका का उदाहरण खोजा जा सकता है और खोजा गया है, परंतु इन पुस्तकों को कोई रीति ग्रंथ नहीं कहता। डॉक्टर राजीव प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य, प्रथम संस्करण, पृष्ठ संख्या 24 से 25। बिहारी सच्चाई को रीति ग्रंथ सिद्ध करने के लिए मुख्यतः दो बातें प्रस्तुत की गई हैं, नखशिखवर्णन और नायिका भेद चित्रण। अब आइए इनकी वास्तविकता का पता लगाएं। लाला भगवान दीन ने बिहारी बोधनी में दोहों के कुछ अनुक्रम बांधे हैं जिनमें उपर्युक्त दोनों बातों का सन्निवेश हो जाता है। पहले नखशिखवर्णन का औचित्य ही देखें। बिहारी बोधनी के अनुसार नखशिख का क्रम पहले शतक के 33वें दोहे से आरंभ होता है और फिर दूसरे शतक के 113वें दोहे तक चलता जाता है। इसके अंतर्गत जिन कई अंगों तथा आभूषणों का वर्णन आता है वे निम्नलिखित हैं: केश, मुख पर बिखरी लट, वेणी, टीका, बिंदी, भौं, नयन, नयन शयन, नासिका, कपोल, श्रवण, अधर, चिबुक, डिठौना और मेहंदी। किंतु वस्तु के वर्णन में कितने दोहे रखे गए हैं उनकी क्रमबद्ध तालिका देखिए। अंग दोहा: केश 4, लट 1, वेणी 1, टीका 1, बिंदी 7, भौं 3, नयन 35, नासिका 6, कपोल 1, श्रवण 1, अधर 1, चिबुक 4, डिठौना 2, मुख 1, चिबुक 2, हास्य 1, कुछ 1, कट 2, जंघा 1, मोरवा 1, एड़ी 2, पायल 1, अनवट 1, पगतल 1। क्या इसे नक्षिक वर्णन माना जा सकता है? इसमें कुछ अंगों के वर्णन में व्यतिक्रम हो गया है और कुछ अंग छूट गए हैं। व्यतिक्रम के संबंध में रीति प्रेमी सहृदय कह सकते हैं कि इसके लिए बिहारी नहीं लाला जी दोषी हो सकते हैं, लेकिन इस वर्णन में दांत, ग्रीवा और हाथ जैसे प्रमुख अंग छूट गए हैं और इसके लिए कौन दोषी ठहरेगा? इससे स्पष्ट है कि नक्षिक वर्णन को दृष्टि में रखकर बिहारी ने नक्षिक वर्णन नहीं किया है। नायक नायिका भेद की परीक्षा करने पर भी हम उपर्युक्त निष्कर्ष पर ही पहुंचते हैं। एक ने जिस दोहे में जिस मनोनुकूल नायिका को ढूंढ निकाला है वह दूसरे को मान्य नहीं है। अभी हाल में ही प्रकाशित पुस्तक बिहारी और उनका साहित्य डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा में मध्या का उदाहरण पेश करते हुए निम्नलिखित दोहा उद्धृत किया गया है: दुरत न कुछ बिच कन चुकी चुपरी सारी सेत, कवि आंकन के अर्थ लौं प्रकट दिखाई देत। आचार्यों ने मध्या की स्थित मुग्धा और प्रौढ़ा के बीच मानी है। इसमें लज्जा की कुछ कमी और काम की कुछ अधिकता होने लगती है। दूसरे शब्दों में इसमें लज्जा और काम समान रूप में रहते हैं। क्या उपर्युक्त दोहे में इसी प्रकार की नायिका की व्यंजना होती है? लाला जी ने इसे कंचुकी वर्णन के अंतर्गत रखा है और रत्नाकर जी ने अंकुरित यवना के अंतर्गत। उस पुस्तक से ही प्रौढ़ा का एक उदाहरण लीजिए: कुछ गिरी चढ़ी अति थकित हुए, चली दीठ मुँह चाड़, फिर नटरी पर ये रही, परी चिबुक की गाढ़। प्रौढ़ा काम कला में अति प्रवीण मानी जाती है, मध्या की अपेक्षा उसमें लज्जा की भावना और भी कम हो जाती है। वह प्रिय के साथ काम क्रीड़ा में निसंकोच संलग्न दीख पड़ती है। भला यह दोहा किस प्रकार प्रौढ़ा का उदाहरण माना जा सकता है? अंग परिवर्तन को ही दृष्टि में रखकर नायिका भेद का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा वयजन्य अवस्थाएं ही नहीं है, बल्कि इनके मूल में लज्जा और काम विकार का न्यूनाधिक्य भी अनुस्यूत है। अधिक वय की होकर भी अपने अंग परिवर्तन के बावजूद भी कोई मध्या मुग्धा या प्रौढ़ा मध्या हो सकती है। इस तरह इसके विपरीत भी समझना चाहिए। मनोवैज्ञानिकता का विचार न करने के कारण इस तरह की गड़बड़ी हो जाना स्वाभाविक है। यह सब कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि इस तरह सच्चाई में नायिका भेद ढूंढ निकालना न्याय नहीं कहा जा सकता है। यदि ऐसा करना होता तो इन दोहों के साथ लक्षण जोड़ देना किसी के लिए कोई मुश्किल काम न था। तो क्या बिहारी की ऐतिहासिक चेतना में सच्चाई की दीर्घ परंपरा का अनुशीलन आकलन सन्निहित है और वह उस परंपरा को आगे बढ़ाती है? इसका आंशिक उत्तर पीछे दिया जा चुका है। फिर भी यहाँ यह कहना असंगत नहीं है कि बिहारी ने उस परंपरा को एक ऊंचाई दी। युगीन विवशताओं तथा एक दीर्घ काव्य परंपरा के कारण उन्हें अनेकानेक रूढ़ियों को भी अपनाना पड़ा। यह एक अलग बात है कि जिन ऊहात्मक उक्तियों के लिए बिहारी को कोसा गया वे उन्हें परंपरा से प्राप्त हैं। जिन ऊहात्मक उक्तियों के लिए बिहारी को बहुत कोसा गया है उस तरह की ऊहात्मक उक्तियाँ उनके पूर्ववर्ती काव्य में ही प्राचीन परंपरा से दिखाई पड़ती हैं। एक चुडल्लव चुराणी होई सह मुद्धि कवोल निहितव सासा नल जाल झलक कियव वाह सलिल संसितव। मुग्धा की श्वासाग्नि में और वाष्प जल से तप कर चूड़ियां चूर चूर हो जाएंगी। मुग्धा अपने गालों पर हाथ रखकर शोक मुद्रा में बैठी हुई है। वह श्वास की ज्वाला तथा वाष्प से बने हुए अश्रुओं के ताप से चकनाचूर हो जाएगी। दो, बलयावलि निवडड़ भयण घण उद्भुव जाय बल्लह विरह महादहो थाह गवेशय नाय। कार्य के कारण नायिका की वलयावल के गिरने की आशंका हो गई है, इसीलिए वह अपनी भुजाओं को ऊपर उठाए हुए चली आ रही है। ऐसा लगता है मानो प्राण वल्लभ के विरह महोदध की थाह ले रही हो। अब विहारी की कुछ उक्तियां देखिए। एक, पलन प्रगटि बरु नीन बढ़ी नहीं कपोल ठहरात असुआ परिछतिया छिनक छन छनाई छिप जात। सुनत पथिक मुह माह निसी लुए चलत उही गाम बिन बूझे बिनही कहे जियत बिचारी बाम। खंडिता और मान प्रसंगों की चर्चा आगे के अध्याय में की गई है। बिहारी ने विदेशी प्रभाव को भी अपने ढंग से ग्रहण किया, पर उसकी भी कुछ रूढ़ियां जो संख्या में कम ही हैं सच्चाई में सन्निविष्ट हो गई हैं। फारसी उर्दू साहित्य में उल्लिखित कतरे का दरिया होना, कलेजे का चाक होना, खून खराबी आदि को भी बिहारी सच्चाई में देखा जा सकता है। हिंदी के मुसलमान कवियों में यह परंपरा पहले से चली आ रही थी। उसका प्रभाव मीरा जैसे भक्त कवियों पर भी पड़ा। उसे बिहारी का ग्रहण करना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। गोपिन के असुवन भरी सदा असोस अपार डगर डगर नय हुए रही बगर बगर के बार। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि ब्रजमंडल के प्रत्येक मार्ग में घर घर के द्वार पर गोपियों के आंसुओं से भरी हुई कभी न सूखने वाली अपार नदी बन गई है। गनीमत यह हुई कि नाव चलाने की व्यवस्था नहीं की गई। अब उर्दू के एक शेर पर गौर फरमाइए। गौर से कतरे की जानिब जो नजर की तो खुला हम इसे कतरा गलत समझे थे दरिया है यही। दोनों में कितना साम्य है। बिहारी की एक दूसरी उक्ति देखिए। करी बिरह ऐसी तउ गैल न छाड़त नीच दीने हूँ चश्मा चखनी चाहे लहे न मीच। कार्य का बड़ा ही चमत्कारिक दृश्य है। फारसी उर्दू की परवर्ती परंपरा से इसकी तुलना कीजिए। मर गया सदमय यक जुम्बिशे लब से गालिब, नातवानी से हरीफे, दमे इंसाना हुआ। यह प्रसिद्ध है कि ईसा मसीह कुछ शब्द कुम व इजनिल्लाह कहते थे और उसके प्रभाव से मुर्दों में प्राण आ जाते थे। गालिब का कथन है कि मैं इतना दुबला हो गया था कि प्रियतम रूपी मसीह के होंठ कुछ कहने को हिले नहीं कि मैं उसकी चोट से मर गया। कहना न होगा कि गालिब ने बिहारी को बहुत पीछे छोड़ दिया। यह थी भी तो गालिब के पुरखों की परंपरा। सुकुमारता का एक उदाहरण देकर मैं इस प्रसंग को समाप्त करूंगा। छाले परिबे के डरन सकय न हाथ छुआए, झझकत हिये गुलाब के छंवा छवैयत पाए। छाले पड़ने के डर से नाई नायिका के पाँव को हाथों से छूने में हिचकिचाती है और गालिब के माशूक की नजाकत देखिए। इस नजाकत का बुरा हो वो भले हैं तो क्या, हाथ आए तो उन्हें हाथ लगाए न बने। यहाँ भी कदाचित छाले पड़ने के डर से ही माशूक का स्पर्श नहीं किया जाता।